हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। उस लड़की ने घुटनों तक आती ब्लैक पेंसिल स्कर्ट और ब्लू ऑफ शोल्डर टॉप पहना हुआ था। उसके कपड़े ऑफिस वियर कम और पार्टी वियर ज्यादा लग रहे थे। उसके खुले बाल और मेकअप भी ऑफिशियल या फॉर्मल वर्क के अनुसार थोड़े ज्यादा थे। सारे बाल जो बैंग्स कटे हुए थे उसके पूरे माथे और आधे से ज्यादा चेहरे को ढांक रहे थे। फिर भी जितना चेहरा नजर आ रहा था वो दिखने में ठीक ठाक ही लग रही थी, लेकिन वो ज्यादा मुस्कुरा रही थी और काफी एक्साइटेड भी लग रही थी। मे आई कम इन बोलने के बाद उसने दरवाजे पर ही इंतजार किया। नताशा, आई थिंक यू फॉरगॉट द बेसिक मैनर्स, रवि नताशा को इस तरह अंदर आता देखकर उस पर चिल्लाया। आदित्य लैपटॉप में ही अपनी नजरें गड़ाए बैठा था। उसने नताशा की तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखा। सॉरी रवि सर, मैंने वेट तो किया था डोर पर बट कोई रिप्लाई नहीं आया तो मुझे लगा शायद आपने सुना नहीं होगा, नताशा काफी गहरी आवाज में थोड़ा रुक रुक कर अपने शब्द चबाते हुए बोली। लीव इट, बोलो क्या काम है, रवि ने उसकी बात पर ध्यान दिए बिना सीधे ही उससे पूछा। एक्चुअली मुझे आधी सर से डिस्कस करना था इस प्रोजेक्ट के बारे में, वो लड़की भी उसी तरह रवि की तरफ ध्यान दिए बिना आदित्य की तरफ बढ़ते हुए बोली। आदित्य सर अभी बिजी है नताशा, तुम जाओ यहाँ से, कल डिस्कस कर लेना ये, और इतनी रात तक तुम अभी ऑफिस में क्यों हो, रवि नताशा के सामने आकर उसे रोकते हुए बोला, क्योंकि वो जानता था आदित्य इस वक्त उससे मिलना नहीं चाहता था। वो तो मैं नाइट शिफ्ट पर हूँ आज और बस 5 मिनट का ही काम है मुझे, नताशा फिर से थोड़ी दबी हुई आवाज में आदित्य की तरफ देखते हुए बोली। मुझे लगता है तुम्हें अपने कानों का इलाज कराना चाहिए नताशा, जब रवि ने तुमसे कह दिया कि मैं अभी बिजी हूँ तो तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या, गेट आउट ऑफ हेयर राइट नाउ। काफी देर से रवि और नताशा के बीच हो रही बातचीत सुनकर आदित्य आखिरकार गुस्से भरी निगाहों से नताशा की तरफ देखते हुए बोला, आई एम सो सॉरी सर। आदित्य को इस तरह गुस्सा करते देख नताशा उसे सॉरी बोलते हुए जल्दबाजी में उसके केबिन से बाहर गई। उसके जाने के कुछ देर बाद ही आदित्य ने अपना सारा काम समेटा और रवि की तरफ देखकर बोला, कार निकालो रवि, मैं तुम्हें नीचे गेट पर मिलता हूँ। ओके सर, बोलता हुआ रवि आदित्य से पहले केबिन से निकलकर पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ गया। उसके बाद आदित्य सामने डेस्क से अपना सारा सामान उठाकर केबिन से बाहर निकला। नताशा भी जल्दबाजी में उसकी तरफ आते हुए उससे टकरा गई। आदित्य के हाथ से उसका मोबाइल फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। व्हाट द हेल, आर यू ब्लाइंड, आदित्य बिना सामने वाले इंसान को देखे ही गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोला। आई एम सॉरी सर, मैं बस आपसे, मेरा मतलब है मैं आपसे माफी मांगने ही आ रही थी, मुझे नहीं पता था आप बिजी हैं और मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। आदित्य को इस तरह गुस्से में देखकर नताशा फिर से काफी डरी सहमी सी आवाज में माफी मांगते हुए बोली, इट्स ओके बट बिहेव योरसेल्फ नताशा, आदित्य अपना नीचे गिरा फोन झुककर उठाते हुए बोला। लेकिन जब तक नताशा भी उसका मोबाइल फोन उठाने के लिए झुक चुकी थी और उसका हाथ जैसे ही आदित्य के हाथ पर पड़ा, आदित्य ने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया और सीधा खड़ा हो गया। आपका फोन सर, नताशा आदित्य का फोन उठाकर उसे देते हुए उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती हुई बोली। आदित्य ने जल्दी से उसके हाथ से अपना मोबाइल फोन लिया और तेज कदमों से लिफ्ट की तरफ चला गया। नताशा वहीं खड़ी उसी तरह मुस्कुराते हुए काफी देर तक आदित्य को देखती रही जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। अगली सुबह सुनैना सोकर उठी। उसने कमरे में देखा कि आदित्य अब तक वापस नहीं आया था, लेकिन उसे अच्छी तरह से याद था कि आज उसे क्या क्या करना है, और फिर आदित्य आया नहीं तो उसे जहाँ जाना था वो जाएगी। ये सोचते हुए वो जल्दी से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। उसके अपने कपड़े तो यहाँ पर नहीं थे, इसलिए कॉलेज जाने के हिसाब से उसने जीन्स और वाइट टॉप पहन लिया। ऐसे कपड़े वो शादी से पहले भी हमेशा से पहना करती थी, इसलिए भले ही वो कपड़े उसके नहीं थे लेकिन उसे वे काफी कम्फर्टेबल थे। थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर आई और नीचे आकर घर से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी गीता ने उससे पूछा, कहीं जा रही है क्या भाभी? हाँ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो बस उसी के लिए जा रही थी। सुनैना को समझ नहीं आता था कि वो गीता को क्या बताए और क्या नहीं, इसलिए मुस्कुराकर वो गीता से बस इतना ही बोली, अरे लेकिन नाश्ता तो कर लीजिए, पोहा बनाया है मैंने आपके लिए, मुझे लगा आपको पसंद होगा, कल रात भी खाना नहीं खाया था आपने और तब भैया भी घर पर नहीं थे, गीता सुनैना को नाश्ते के लिए रोकते हुए बोली। भूख तो लगी है पर टाइम, बोलते हुए सुनैना ने घड़ी की तरफ एक नज़र डाली। सुबह के लगभग 9 बजने वाले थे। ज्यादा टाइम कहाँ हुआ है भाभी, अभी 9 भी तो नहीं बजे। आप बैठिए, मैं जल्दी से नाश्ता लगाती हूँ आपके लिए, गीता ने बड़े ही प्यार और अपनेपन से सुनैना से कहा। तो सुनैना चाह कर भी मना नहीं कर पाई, क्योंकि इतनी बार तो नाश्ते या खाने के लिए उसके अपने घर में भी उसे कोई जल्दी नहीं बोलता था उसकी माँ की डेथ के बाद से। इसलिए सुनैना जल्दी से डाइनिंग चेयर पर बैठ गई। जैसे ही गीता ने नाश्ता लाकर दिया, वो नाश्ता करने लगी और नाश्ता करते हुए गीता की तारीफ भी करने लगी। वाओ गीता दी, इट्स सुपर यमी, इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट, मिस कर देती मैं तो जल्दबाजी में, नाश्ता करते हुए सुनैना गीता की तारीफ करते हुए बोली। तो गीता भी सामने खड़े होकर मुस्कुराने लगी उसे नाश्ता करते हुए देखकर। और फिर कुछ देर बाद नाश्ता खत्म करके सुनैना उसी तरह जल्दबाजी में घर से निकल गई। क्रमशः